ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा की आज की मुरली बहुत ही सावधानी भरी है, शिक्षाओं भरी है। बाबा हमारे बाप टीचर सतगुरु हैं, तो बाप के रूप में तो प्यार से पालना करते हैं, मीठी मीठी शिक्षाएं भी देते हैं और टीचर के रूप में हमें पढ़ाते हैं, रचयिता रचना का ज्ञान देते हैं और सतगुरु रूप में हमें सावधान भी करते हैं। तो आज वो सावधानी की मुरली है। सावधान करते हैं कि धर्मराज की सजाएं मिलेगी, धर्मराज फिर उस समय बख्शेगा नहीं, फिर तो पश्चाताप के आंसू बहाएंगे, इसीलिए अभी सावधान हो जाओ। तो आज बाबा ने सतगुरु रूप में सावधानी दी है। बहुत सारी बातों में हम गफलत करते हैं और उन गफलतों के कारण फिर सजा के भी भागी बनते हैं। तो आज बाबा ने विशेष रूप से सावधान किया है, कितनी बातों में सावधान किया है, तो बहुत ही ध्यान पूर्वक बाबा की मुरली सुनेंगे और अपने आप को सावधान करेंगे। आज 13-12-24 है। मीठे बच्चे, अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख देना, ग्लानी करना, ये सब आसुरी लक्षण है। और हम लोग तो कितना सहज ले लेते, किसकी ग्लानी करेंगे, निंदा करेंगे, पर चिंतन करेंगे, तो हम समझते ये तो कॉमन बात है, लेकिन ये आसुरी लक्षण है। प्रश्न है, बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? पिता तो बच्चों को प्यार ही करेगा, तो बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, बाप की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती है, मीठी मीठी शिक्षाएं ना, बहुत प्यार से बाबा शिक्षाएं देते हैं, बाप की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती है, ये शिक्षाएं देना ही उनके ऊंचे प्यार की निशानी है। और वो शिक्षाएं कैसे देते हैं, प्यार से, बच्चे ये मत करो, बच्चे ये करो, बच्चे ये मत करो, तो क्या करो क्या नहीं करो, और बच्चे बच्चे साथ में कहते हैं, तो ये प्यार की निशानियां हैं। तो बाबा की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती है, ये शिक्षाएं देना ही उनके ऊंचे प्यार की निशानी है। तो बाप की पहली शिक्षा है जो प्यार से बच्चों को देते हैं, मीठे बच्चे श्री मत के बिगर कोई उल्टा सुलटा काम नहीं करना। जो श्री मत नहीं है वो काम बिल्कुल नहीं करना, ये बाप की मीठी मीठी शिक्षा है। दूसरा, स्टूडेंट के रूप में, टीचर के रूप में क्या मीठी शिक्षा देते हैं? दूसरा, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लॉ नहीं उठाना है। मैं इसको मजा चखाऊंगा, मैं इसको दिखाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं उसको सजा दिलाऊंगा, मैं इसमें कितना अभिमान आता है। हाँ, कोई भी बात है आप बड़ों को रिपोर्ट करो ना, आप क्यों लॉ को हाथ में उठाते हो? तो टीचर भी यही कहेगा, टीचर खुद भी लॉ नहीं उठाएगा, वो तो सीधा प्रिंसिपल के पास जाएगा। अगर खुद लॉ उठाया तो फिर वो टीचर भी जिम्मेदार हो जाता है, तो प्रिंसिपल के हाथ के पास जाएगा, और बड़ी भूल है तो फिर तो और आगे जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं लॉ को हाथ में नहीं उठाना है। दूसरा, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लॉ नहीं उठाना है, तुम अपने मुख से सदैव रत्न निकालो। आजकल तो टीचर को तो हाथ मारने का भी अधिकार नहीं है, अगर वो मारेगा सीधा माँ बाप के पास वो बच्चा जाएगा, इसने मुझे मारा, अपनी भूल नहीं बताएगा लेकिन टीचर की कंप्लेन करेगा, फिर माँ बाप आके प्रिंसिपल को कहेंगे, फिर प्रिंसिपल टीचर को बुलाएगा, उसको निकाल भी सकता है अगर कोई ऐसी उसको टीचर कुछ कहेगा या सजा देगा। तो तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लॉ नहीं उठाना है, तुम अपने मुख से सदैव रत्न निकालो, पत्थर नहीं। आप शिक्षा भले दो पर प्यार से दो, टीचर बहुत जबरदस्ती नहीं मार सकता है। पहले जमाने में कहते थे, इंग्लिश में कहावत है, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, आप डंडा मारो, आप उसको वैसे सजा दो, नहीं तो बच्चा बिगड़ जाएगा। हाँ, अगर क्योंकि आपने उसको मारा नहीं, लेकिन आजकल ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो तुम अपने मुख से सदैव रत्न निकालो, पत्थर नहीं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब इनको बाबा के सामने लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट चल रहा था, तो बाबा कहते अब इनको यानी लक्ष्मी नारायण तो अच्छी रीति देखते हो, ये है एम ऑब्जेक्ट, अर्थात तुम इस घराने के हो। ऐसे सोचते हैं, लक्ष्मी नारायण का चित्र देखकर ये कहते हैं, सोचते हैं कि हम इस घराने के हैं। कितना रात दिन का फर्क है, दुनिया में तो भक्त लोग इनकी पूजा करेंगे, इनके आगे साष्टांग नमस्कार करेंगे, और हम क्या कहेंगे, हम इनके घर आने के हैं। तो कितना रात दिन का फर्क है, इसलिए घड़ी घड़ी इनको देखना है, देखेंगे क्योंकि फिर याद आएगा ये हमारा लक्ष्य है, हमको ऐसा बनना है। इनों की महिमा तो अच्छी रीति जानते हो, ये पॉकेट में रखने से ही खुशी रहेगी। छोटे छोटे भी चित्र लक्ष्मी नारायण के बनाए गए ना, तो वो पॉकेट में रखो तो बाबा कहते हैं तो खुशी रहेगी। अंदर में दुविधा जो रहती है वो नहीं रहनी चाहिए, क्या करे क्या न करे, बस इन जैसा बनना है, इन जैसा बनना है, तो दुविधा नहीं रहेगी अंदर में, वो नहीं रहनी चाहिए। इसको दे अभिमान कहा जाता है, दुविधा में रहना, क्या करे क्या ना करे, इसको बाबा कहते ये भी दे अभिमान है। बाबा ने लक्ष्य दे दिया है, क्या करना है क्या नहीं करना है सब बता दिया है, तो दुविधा किस बात की। इसको दुविधा दे अभिमान कहा जाता है। देही अभिमानी हो इन लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो समझेंगे हम ऐसा ऐसे बन रहे हैं, तो जरूर इनको देखना पड़े, बार बार इनका चित्र देखना पड़े कि हम ऐसा बन रहे हैं। बाप समझाते हैं तुमको ऐसा बनना है। मध्याजी भव इनको देखो याद करो, मनमना भव मुझे याद करो, और मध्याजी भव इन लक्ष्मी नारायण को देखो और इनको याद करो, इनसे प्रेरणा लो कि हमको ऐसा बनना है। दृष्टांत बताते हैं ना, कौन सा दृष्टांत बताते इस पर कि उसने सोचा मैं भैंस हूं, उसको सम्मोहित किया अंदर में को मैं भैंस हूं मैं भैंस हूं मैं भैंस हूं, तो वो सचमुच ऐसे ही सोचने लगा और सचमुच महसूस करने लगा मैं तो भैंस हूं। तो आप बताते हैं फिर उसको कहा कि अभी निकलो इस दरवाजे से, कहते मैं कैसे निकलूं ये दरवाजा तो बहुत छोटा है मैं तो भैंस हूं, तो वो अपने आप को यही समझने लगा। तो बाबा कहते इसमें भले आप ऐसे समझो मैं लक्ष्मी नारायण बनूंगा मैं लक्ष्मी नारायण बनूंगा मैं लक्ष्मी नारायण बनूंगा, हाँ मैं हूं, बाबा कहते हूं देवता हूं, तो बाबा कहते ये सोचेंगे तो देवता बन जाएंगे, क्यों नहीं बनेंगे। तो इसको आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो बाबा कहते दृष्टांत बताते हैं ना, उसने सोचा मैं भैंस हूं तो वो अपने को भैंस ही समझने लगा। तुम जानते हो ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है, ये बनने का है। इसलिए भी जब मेडिटेशन कराते या कमेंट्री भी देते हैं, अब ये नहीं कहते हैं कि मैं तो अपवित्र हूं मैं तो दुखी हूं मैं तो क्या, हम क्या कहते हैं मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो ये सोचने से ही वो अनुभूति होने लगती है। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है, ये बनने का है, पर कैसे बनेंगे, बनने का तो है पर कैसे बनेंगे, बाप की याद से। हर एक अपने से पूछे बरोबर हम इनको देख बाप को याद कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण को देख करके ऐसे नहीं केवल उनकी ड्रेस को देखो, उनके गहनों को देखो, उनके ताज को देखो, उनके चेहरे को देखो, ऐसे नहीं, पर क्या सोचो बाबा ने इनको बनाया है और बाबा हमको बना रहे, तो इनको देखकर बाबा याद आए। तो बाबा कहते हैं तो ये बनने का है, पर कैसे बनेंगे, बाप की याद से। तो हरेक अपने से पूछे बरोबर हम इनको देख बाप को याद कर रहे हैं, बाबा ने इनको बनाया तो हम भी बाबा को याद करके इन जैसा बनेंगे। तो बाबा को देख बरोबर हम इनको देख बाप को याद कर रहे हैं, ये तो समझते हो कि बाबा हमको देवता बनाते हैं। कौन बना रहे हैं देवता हमें, बाबा। जितना हो सके याद करना चाहिए, ये तो बाप कहते हैं कि निरंतर याद नहीं रह सकती है, बाबा ये भी जानते हैं निरंतर याद नहीं रह सकती है, परंतु पुरुषार्थ करना है, अंदर में दृढ़ संकल्प हो तो ये पुरुषार्थ करना है। भल ग्रस्त व्यवहार का कार्य करते हुए इनको यानी लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे तो बाप जरूर याद आएगा। वर्षा याद किया तो बाप याद आएगा, बाप को याद किया वर्षा याद आएगा, तो बाप जरूर याद आएगा इनको याद करेंगे तो। बाप को याद करेंगे तो ये जरूर याद पड़ेगा हमको ऐसा बनना है, तो यही सारा दिन धुन लगी रहे। सुना कौन सी धुन लगानी है सारा दिन, बाबा हमको ऐसा बना रहे हैं। तो फिर एक दो की ग्लानि कभी नहीं करेंगे, देवताएं कब किसी की ग्लानि करते हैं क्या, ये ऐसा है फलाना ऐसा है, किसी की ग्लानि नहीं करते। तो बाबा कहते हैं तो एक दो की ग्लानि कभी नहीं करेंगे, ये ऐसा है फलाना ऐसा है, जो इन बातों में लग जाते हैं, जो ये ग्लानि करते रहते हैं, जिससे मिलते हैं वो दूसरों की ग्लानि करते रहते हैं, तो बाबा कहते हैं वो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। सीधी बात, वो ऊंच पद कभी पा नहीं सकेंगे जो दूसरों की ग्लानी करते हैं, ऐसे ही रह जाते हैं। कितना सहज करके समझाया जाता है, इनको याद करो, बाप को याद करो तो तुम ये बन ही जाएंगे। इनको भी याद करो, फिर बाप को भी याद करो तो ये बन ही जाएंगे। यहाँ तो तुम सामने बैठे हो, यहाँ मधुबन में ये याद करना बहुत सहज है। सभी के घर में भी ये लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर होना चाहिए। हाँ, जब परिवारों में रहते हैं वो, उनके घर में लक्ष्मी नारायण का चित्र है। जिनके घर में है हाथ उठाओ। अच्छा, सबके घर में है, पर थोड़े होंगे जिनके घर में नहीं है, तो जरूर ये चित्र होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, तो सभी के घर में ये लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर होना चाहिए। कितना एक्यूरेट चित्र है। ट्रांस में रहने जाती थी और ट्रांस में जो देखती थी वो आके आर्टिस्ट को बताती थी, तो कितना एक्यूरेट चित्र है। इनको याद करेंगे तो बाबा याद आएगा। सारा दिन और बातों के बदले यही सुनाते रहो, फलाना ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। हाँ, औरों की ग्लानी करना, किसकी निंदा करना, इसको दुविधा कहा जाता है। अंदर में वो हलचल है तो इसीलिए दूसरों की ग्लानी करता रहता है ना। जैसे गागर होती है, उसमें पानी आधा है, तो आधा पानी होगा तो छलकेगा। इसलिए कहावत भी है, अर्ध गगरिया छलक छलकत जाए। पर जो भरा हुआ घड़ा होगा वो छलकेगा नहीं, उसमें से पानी गिरेगा भी नहीं। इसलिए पूरा भरा हुआ हो तो गिरेगा भी नहीं। तो कोई किसी की ग्लानी निंदा नहीं करेंगे अगर अंदर में भरपूर है। तो बाबा कहते हैं, इसको दुविधा कहा जाता है। हाँ, किसकी ग्लानी करना, निंदा करना, ये दुविधा कहा जाता है। तुम्हें अपनी दैवी बुद्धि बनाना है। किसको दुख देना, ग्लानी करना, चंचलता करना। हाँ, ग्लानी तो बहुत बुरी बात है, पर चंचलता भी कम नहीं है। चंचलता उनके साथ करना, ये स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। हाँ, कैसे चंचलता करते हैं, ऐसे हंसी मजाक करते हैं उनके बारे में, और हम समझते हम तो हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो जब सुनेगा उसको कितना दुख होगा कि मेरे लिए ऐसे हंसी मजाक कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, ये स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। इसमें तो आधा कल्प रहे हो, आधा कल्प तो यही सब किया है ना, ग्लानी ग्लानी, आधा कल्प रहे हो। अभी तुम बच्चों को कितनी मीठी शिक्षा मिलती है, इनसे ऊंच प्यार दूसरा कोई होता नहीं। मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा देते, इनसे ऊंचा प्यार कोई होता नहीं। कोई भी उल्टा सुल्टा काम श्रीमत बिगड़ नहीं करना चाहिए। तो बाप ध्यान के लिए भी डायरेक्शन देते हैं। ट्रांस में जाती है बहने, ध्यान में जाती है, तो सिर्फ भोग लगाकर आओ। बाबा ये तो कहते नहीं है कि वैकुंठ में जाओ। पहले बहुत जाती थी, वैकुंठ में चली जाती थी और फिर एक्शन भी करती थी, आंखें बंद है पर वो ट्रांस में, और ऐसे 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 एक्शन करती जैसे ये गिरास कर रही है, माना वैकुंठ में चली गई है। तो बाबा कहते ये भी क्यों करती हो बाबा, आपको लगा, आपको डायरेक्शन मिला, भोग लगा कर आओ। तो भोग लगा कर आओ, बस यही काम करो, बाकी स्वस्थ वैकुंठ में चले जाना, रास करना, ये सब क्यों करती हो। तो बाबा को अच्छा नहीं लगता था, और सचमुच बाबा देखते थे, और बाबा वहां भोग लगता था तो संदेशी बाबा के पास ही बैठती थी, और बाबा देखते थे कि ये संदेशी तो कहीं और चली गई है, माना वैकुंठ में कोई रासवास कर रही है, तो बाबा की मुरली जलने लगती थी। बाबा मुरली फिर चलाते रहते थे भले वो रास कर रही है। फिर बाबा कहते देखो अभी ये बाबा की मुरली नहीं सुनेगी, क्योंकि ये तो ट्रांस में है, ये तो वैकुंठ में रास कर रही है। तो फिर बाबा कहेंगे देखा ये टाइम वेस्ट कर रही है। बाबा यहाँ तक कहते थे, बाबा की यहाँ मुरली चल रही है और ये तो रास कर रही है। तो बाबा कहते थे श्रीमत के विरुद्ध कोई ऐसा कर्म नहीं करो। तो ये भी श्रीमत के विरुद्ध हुआ, बाबा ने तो कहा ही नहीं कि ट्रांस में जाकर रास करो। हा? तो देखो बाबा क्या कहते हैं, बाबा ये तो कहते नहीं कि वैकुंठ में जाओ रास विलास आदि करो, दूसरी जगह गए तो समझो माया की प्रवेशता है। दूसरी जगह गए तो जबकि बाबा का डायरेक्शन नहीं है कि वैकुंठ जाओ और फिर भी गए तो बाबा कहते हैं ये माया की प्रवेशता है। माया का नंबर वन कर्तव्य है पतित बनाना, ये तो बहुत बड़ा है उसका काम है माया का, पतित बनाना। बेकायदे चलन से नुकसान बहुत होता है, हो सकता है फिर कड़ी सजाएं भी खानी पड़े। अगर अपने को संभालेंगे नहीं तो बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, उनके पास बेहद का हिसाब किताब रहता है। रावण की जेल में कितना, रावण की जेल में बाबा कहते हैं क्या, रावण की जेल में कितनी सजाएं खाई है, रावण की जेल में कितने वर्ष सजाएं खाई है, आधा कल्प तो खाई है ना, गर्भ जेल की भी सजाएं खाई है। इस दुनिया में कितना अपार दुख है। अभी बाप कहते हैं और सब बातें भूल, एक बाप को याद करो और सभी दुविधा अंदर से निकाल दो। विकार में कौन ले जाते हैं, कौन ले जाते हैं विकार में, माया के भूत काम विकार। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है ही यह राजयोग है ना, बाप को याद करने से ये वर्षा मिलेगा तो इस धंधे में लग जाना चाहिए। पर किचड़ा सारा अंदर से निकाल देना चाहिए। माया की पराकाष्ठा भी बहुत कड़ी है, माया की पराकाष्ठा बहुत कड़ी है, माना माया परखने में बहुत होशियार है, इसलिए माया की पराकाष्ठा भी बहुत बाबा कहते हैं बहुत कड़ी है। वो जैसे माया देखती है ये बाबा को भूला हुआ है, ये गफलत में है, तुरंत उसको अटैक कर लेती है, तो बहुत कड़ी है। परंतु उनको उड़ाते रहना है, लगता है कि माया आ रही है तो उसको उड़ाते रहना है, उसको आने नहीं देना है। जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है, अभी तो निरंतर याद हो न सके, आखिरी निरंतर तक भी आएंगे तब ही ऊंच पद पाएंगे। अगर अंदर दुविधा खराब ख्यालात होंगे तो ऊंच पद मिल नहीं सकता। माया के वश होकर ही हार खाते हैं, जैसे हार खाते हैं माया के वश हुए माना हार खाई। तो बाप समझाते हैं बच्चे गंदे काम से हार मत खाओ, निंदा आदि करते तो तुम्हारी बहुत बहुत बुरी गति हो गई है। द्वापर कलयुग से ये काम किया है तो कितनी बुरी गति हो गई है। अभी सदगति होती है तो बुरे कर्म मत करो। बाबा देखते हैं माया ने गले तक ग्रास कर लिया है, ग्रास माना वो जैसे खाने की रोटी होती है ना वो मॉर्सल, उसको ग्रास कहते हैं, एक ग्रास मुंह में डालो, तो माया ने गले तक ग्रास कर लिया है, वो हप कर लिया अंदर माया ने, पता भी नहीं पड़ता। खुद समझते हैं हम तो बहुत अच्छा चल रहे हैं, परंतु नहीं, बाबा की नजरों में वो अच्छा नहीं है, खुद की नजरों में भले वो अपने आप को अच्छा समझता हो। तो बाप समझाते हैं मनसा वाचा कर्मणा मुख से रत्न ही निकालने चाहिए, गंदी बातें करना ये क्या है, पत्थर निकालना है, उल्टी सुलटी बातें करना, निंदा ग्लानी करना, ये पत्थर निकालना है। अभी तुम पत्थर से पारस बनते हो तो मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने चाहिए। बाबा को तो समझाना पड़ता है ना, बाप का हक है बच्चों को समझाना, तो बाबा ही तो समझाएगा। हाँ भाई बहन एक दो को नहीं समझाएंगे, अगर भाई या बहन समझाएंगे वो कहते तुम कौन होते हो, हाँ तुमको भी देख लिया, तुम क्या हो जो तुम दूसरों को कहते हो। पर बाप तो समझा सकते हैं ना, तो बाबा ही समझा रहे, ये मनुष्य आत्माएं थोड़ी समझा रही। तो बाबा कहते हैं बाप का हक है बच्चों को समझाना, ऐसे तो नहीं भाई भाई को सावधानी देंगे। टीचर का काम है शिक्षा देना, वो कुछ भी कह सकते हैं, टीचर भी शिक्षा देता है तो वो कुछ भी कह सकते हैं। स्टूडेंट को हाथ में लॉ नहीं उठाना है, स्टूडेंट को नहीं कुछ कह सकते हैं। टीचर तो स्टूडेंट तो आपको सावधानी दे सकता है, तो स्टूडेंट हो ना, बाप समझा सकते हैं, बाकी बच्चों को तो बाप का डायरेक्शन है कि एक बाप को याद करो। तुम्हारी तकदीर अभी खुली है, श्रीमत पर न चलने से तुम्हारी तकदीर बिगड़ पड़ेगी, बिगड़ जाएगी तकदीर अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाप की श्रीमत पर न चलने से क्या क्या होगा, एक तो सजाएं खानी पड़ेगी और दूसरा पदवी भ्रष्ट हो जाएगा। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की बाजी है, बाप आकर पढ़ाते हैं तो बुद्धि में रहना चाहिए कि बाबा हमारा टीचर है, जिनसे ये नई नॉलेज मिलती है कि अपने को आत्मा समझो। आत्माएं और परमात्मा का मेला कहा जाता है ना, तो 5000 वर्ष बाद मिलेंगे, इसमें जितना वर्षा लेना है ले सकते हो। अभी मिल रहे हैं बाबा, फिर 5000 साल के बाद मिलेंगे, इसलिए अभी जितना वर्षा लेना है ले लो, ले सकते हो, नहीं तो बहुत बहुत पछताएंगे, रोएंगे। सब साक्षात्कार हो जाएगा। स्कूल में बच्चे ट्रांसफर होते हैं तो पिछाड़ी में बैठने वालों को सभी देखते हैं। स्कूल में तो जो होशियार स्टूडेंट होते हैं उनको टीचर कहेगी आगे बैठो, अब जो डल स्टूडेंट्स हैं वो पीछे पीछे जाके बैठते हैं। टीचर भी उनको कुछ नहीं कहती है, पर होशियार है उनको तो आगे बुलाती है ना। दादी जी, दादी जानकी भी देखती थी, बहुत बार देखती है, फलाना कहाँ है, फलाना कहाँ, वो पीछे बैठा, अरे पीछे क्यों बैठे हो, आगे आओ आगे आओ। तो जो अच्छे होशियार स्टूडेंट्स होंगे, जिनको शौक होगा, वो तो आगे बैठेंगे। मैं आपको लोगों को नहीं कह रही हूँ जो पीछे बैठे हैं, हो सकता है आपको जल्दी जाना होगा। तो बाबा कहते हैं, स्कूल में बच्चे ट्रांसफर होते हैं तो पिछाड़ी में बैठने वालों को सभी देखते हैं। अब जो आगे बैठे होंगे उनको तो कहाँ देख पाएंगे, क्योंकि सब इकट्ठे बैठे, जो पीछे बैठा होगा एक एक दिखाई देता है, तो जरूर पता चलेगा इसको शायद इंटरेस्ट कम है इसीलिए पीछे जाके बैठा है। स्कूल में बच्चे ट्रांसफर होते हैं तो पिछाड़ी में बैठने वालों को सभी देखते हैं, यहाँ भी ट्रांसफर होते हैं, अगर कोई ऐसी बात है तो पीछे जाके बैठेंगे, कोई देखे नहीं मुझे। तुम जानते हो यहाँ शरीर छोड़कर फिर जाए सतयुग में प्रिंस के कॉलेज में भाषा सीखेंगे। सतयुग में क्या होगा, भाषा ही सीखेंगे ना, भाषा सीखेंगे, और जो प्रिंसेस का ही कॉलेज होगा, स्कूल होगा, तो राज्य कैसे करना है वो सिखाएंगे, बाकी तो भाषा सिखाएंगे, पेंटिंग सिखाएंगे, ड्राइंग सिखाएंगे, सिंगिंग सिखाएंगे, बच्चों को यही तो सिखाया जाता है। तो बाबा कहते हैं वहां की भाषा तो सभी को पढ़नी पड़ती है, मदर लैंग्वेज है, तो जो उनकी अपनी माता पिता की भाषा है वो भी जरूर सीखनी होती है। बहुतों में पूरा ज्ञान नहीं है, फिर पढ़ते भी नहीं है रेगुलर, एक दो बार मिस किया तो आदत पड़ जाती है मिस करने की, अंडरलाइन, एक दो बार मिस किया तो फिर आदत पड़ जाती है मिस करने की। संग है माया के मुरीदों का, वो कहेगा अरे सो जाओ और ठंडी है कम पढ़ लेंगे मुरली, क्या जाना क्लास में। अब ये किसका संग मिला, जो खुद भी नहीं जाता है ना, तो इसीलिए बाबा कहते हैं संग है माया के मुरीदों का। शिव बाबा के मुरीद थोड़े हैं और माया के मुरीद बहुत है ना, बाबा कहते हैं शिव बाबा के मुरीद थोड़े हैं, बाकी सब है माया के मुरीद। तुम शिव बाबा के मुरीद बनते हो तो माया सहन नहीं कर सकती है, ये क्यों भगवान का बना है, ये मेरा क्यों नहीं है, मेरे से क्यों दूर हो गया, तो वो सहन नहीं कर सकती है माया। तो माया सहन नहीं कर सकती है, इसीलिए संभाल बहुत करनी चाहिए। छी छी गंदे मनुष्यों से बड़ी संभाल रखनी है। हंस और बगुले है ना, बाबा ने रात को भी शिक्षा दी है, सारा दिन कोई न कोई की निंदा करना, पर चिंतन करना, इनको कोई दैवी गुण नहीं कहा जाता है, दैवी गुण थोड़ी है, पर निंदा करना, पर चिंतन करना, इनको कोई दैवी गुण नहीं कहा जाता है। देवताएं ऐसे काम नहीं करते हैं। बाप कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो, फिर भी निंदा करते रहते हैं। निंदा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, दुविधा अंदर रहती ही है, ये भी अंदर मारा मारी है, अंदर में दुविधा है, माना जैसे अंदर में मारा मारा ही है। मारा मारी कैसे है, मन कुछ और सोचता है, बुद्धि कुछ और निर्णय देती है, बुद्धि कहती है नहीं करो, मन कहता है करो, अब मन कहता है करो और बुद्धि कहती नहीं करो, तो मारा मारी हुई ना अंदर, तो ये भी अंदर मारा मारी है। मुफ्त अपना खून करते हैं, कितनी बड़ी बात है, मुफ्त अपना खून करते हैं, आत्मा का घात करते हैं, बहुतों को घाटा डालते हैं, फलाना ऐसा है इसमें तुम्हारा क्या जाता है, अच्छा वो ऐसा है वो पाएगा ना, जो करेगा सो पाएगा, हाँ तुम्हारा क्या जाता है, बाबा कहते हैं इसमें तुम्हारा क्या जाता है, सबका सहायक एक बाप है। अभी तो श्री मत पर चलना है, मनुष्य मत तो बड़ा गंदा बना देती है, एक दो की ग्लानी करते रहते हैं, ग्लानी करना ये है माया का भूत, वो माया का भूत लगा उसको अगर किसकी ग्लानी करता है। ये है ही पतित दुनिया, तुम समझते हो, हाँ क्या समझते हो, कि हम अभी पतित से पावन बन रहे हैं, तो ये बड़ी खराबियां हैं। समझाया जाता है आज से अपना कान पकड़ना चाहिए, बाबा कहते कान पकड़ो, टीचर भाई कान पकड़ो, अगर कोई पर चिंतन करता है, पर निंदा करता है, ग्लानी करता है, या कोई भी ऐसा बेकायदे चलन चलता है, अपना कान पकड़ो, टीचर कहेगी ना कान पकड़ो और माफी मांगो, तो टीचर तो चलो माफी दे भी देगा, लेकिन धर्मराज थोड़ी माफी देगा, अभी तो फिर भी टीचर रूप में सदगुरु रूप में है, तो बाबा को बाबा से माफी मांगते हैं तो बाबा कहेगा अच्छा आधा माफ हो गया, लेकिन धर्मराज के आगे तो बाबा माफ नहीं करेंगे ना, तो बाबा कहते हैं हाँ, तो बाबा कहते हैं कभी ऐसा समझाया जाता है आज से अपना कान पकड़ना चाहिए, कभी ऐसा कर्म नहीं करेंगे, कुछ भी अगर देखते हो हाँ कोई ऐसी गलत काम कर रहा है जो ठीक नहीं है, तो बाबा कहते हैं बाबा को रिपोर्ट करना चाहिए। हाँ जैसे यहाँ भी कुछ होता है दुनिया में भी, कोई ऐसा किया तो पुलिस को रिपोर्ट करेंगे ना, FIR दर्ज कराएंगे, खुद तो नहीं उसको सजा देंगे या कुछ करेंगे, हाँ तो उनके आगे जो है उनको रिपोर्ट करो। तो कुछ भी अगर देखते हो तो बाबा को रिपोर्ट करनी चाहिए, तुम्हारा क्या जाता है, तुम एक दो की ग्लानी क्यों करते हो, बाप सुनता तो सब कुछ है ना, सब सुनता है, वैसे भी देखा कहा जाता है ना दीवारों के भी कान होते हैं, अब आपने तो फुसफुस करके एक के कान में सुना दिया, लेकिन दीवारों के भी कान होते हैं, वो एक तक थोड़ी रहेगा, वो तो फैलेगा, तो इसीलिए बाबा कहते हैं बाप सुनता तो सब कुछ है ना, बाप ने कानों और आंखों का लोन लिया है, ब्रह्मा तन में कानों का भी लोन लिया, आंखों का भी लोन लिया है, बाप भी देखते हैं तो ये दादा भी देखते हैं, चलन वातावरण तो कोई कोई का बिल्कुल ही बेकायदे चलता है, जिनका बाप नहीं होता है ना उनको छोरा कहा जाता है, जो ऐसे ही घूमता रहता है, कोई उसका लक्ष्य नहीं कुछ नहीं, तो उसको कहेंगे छोरा, सिंधी भाषा में इसको छोरा कहते हैं, वैसे राजस्थानी में तो बेटे को छोरा ही कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं, लेकिन सिंधी में छोरा उनको कहेंगे जिनका कोई लक्ष्य नहीं, वैसे ही घूमता रहता, तो बाबा कहते हैं उनको छोरा कहा जाता है, वो अपने बाप को भी नहीं जानते हैं, याद भी नहीं करते हैं, सुधरने बदले और ही बिगड़ते हैं, इसीलिए अपना ही पद गंवाते हैं, श्री मत पर नहीं चलते तो छोरे,
माँ बाप की श्रीमत पर नहीं चलते, त्वमेव माताश्च पिता बंधु आदि भी बनते हैं शिव बाबा। तो बाबा यहाँ इतने सब संबंध है पर बाबा का सुनते ही नहीं है। परंतु ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ही नहीं तो मदर फिर कहाँ से होगी। अब ब्रह्मा कोई नहीं मानते हैं तो फिर माँ भी कहाँ है, तो निधन के हो गए ना, तो फिर कहाँ से होगी माँ भी। इतनी भी बुद्धि नहीं, माया बुद्धि एकदम फेर देती है। बेहद के बाप की आज्ञा नहीं मानते हैं तो दंड पड़ जाता है। जरा भी सदगति नहीं होती है, बाप देखते हैं तो कहेंगे ना इनकी क्या बुरी गति होगी, ये तो टांगर है, ये तो अक का फूल है। टांगर भी ऐसे जंगली फूल होते हैं, टांगर अक ये सब जंगली फूल है, तो उनका उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जिसको कोई भी पसंद नहीं करता है तो सुधरना चाहिए ना, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, जन्म जन्मांतर के लिए घाटा पड़ जाएगा। परंतु देअभिमानियों की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। देखो देअभिमानियों की बुद्धि में बैठता ही नहीं है, जैसे सुनते हुए नहीं सुनते हैं। आत्म अभिमानी ही बाप से लव कर सकते हैं। बलिहार जाना कोई मासी का घर नहीं है। पूरा श्रीमत पर चलना, बुद्धि एकदम समर्पित हो बाबा पर, तो बाबा कहते ये कोई मासी का घर नहीं है। बड़े बड़े आदमी बलिहार तो जा न सके, ये बलिहार जाने का अर्थ भी नहीं समझते हैं। बुद्धि समर्पित, मन बुद्धि सब समर्पित बाबा को। जो माना समर्पित करते हैं कि बाबा की श्रीमत के खिलाफ कुछ कार्य नहीं। तो बाबा कहते हैं वो बलिहार जाने का अर्थ भी नहीं समझते हैं। वो जो बहुत धनवान है बड़े आदमी, हृदय विधीरण होता है, बहुत बंधन मुक्त भी है, बच्चा आदि कुछ भी नहीं है, कहते हैं बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो, ऐसे मुख से कहते हैं पर सच नहीं। भले कहेंगे बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो, लेकिन अंदर में कुछ दाल में काला है। तो ऐसे मुख से कहते हैं परंतु सच नहीं, बाप से भी झूठ बोल देते हैं। बलिहार गए तो अपना ममत्व निकाल देना चाहिए, अभी तो पिछाड़ी है, तो श्रीमत पर चलना पड़े। अंत का समय आ गया, अभी भी नहीं चलेंगे श्रीमत पर तो कब चलेंगे। शिव बाबा श्रीमत पर चलना पड़े, मिल्कियत आदि से भी ममत्व निकल जाए। बहुत है ऐसे बंधन मुक्त, शिव बाबा को अपना बनाया है, एडॉप्ट करते हैं ना, ये हमारा बाप टीचर सतगुरु है, हम उनको अपना बनाते हैं। बाबा को अपना बनाया है, उनकी पूरी मिल्कियत लेने के लिए उनको अपना बनाया है। तो पहले बाबा को बच्चा तो बनाओ, फिर बाबा का बच्चा बन के पूरी मिल्कियत लो। उनकी पूरी मिल्कियत लेने, जो बच्चे बन गए वो घराने में जरूर आते हैं, परंतु फिर उसमें पद कितने हैं, कितने दास दासियां हैं, एक दो पर हुकुम चलाते हैं। हाँ दासियां होते हैं ना, दास पहले एक दास होता है, फिर वो उसका भी दास होगा, उसका भी दास होगा, फिर एक दो पर वो हुकुम चलाएंगे दास दासियां भी। कितने दास दासियां एक दो पर हुकुम चलाते हैं, दासियों में भी नंबरवार होते हैं। रॉयल घराने में बाहर के दास दासियां तो नहीं आएंगी ना, जो घर में दास दासियां है वही होती है, बाहर के दास दासियां नहीं आएंगे। जो बाप के बने हैं उनको बनना है, वही फिर दास दासी बनेंगे अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनमें पाई का भी अकल नहीं है। अब देखो बाबा क्या कहते, पाई का भी अकल नहीं, ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं। बाबा ऐसे तो कहते नहीं है कि मम्मा को याद करो व मेरे रथ को याद करो। शिव बाबा तो कहते नहीं है मम्मा को याद करो या ब्रह्मा को याद करो। शिव बाबा का रथ है लेकिन उनको याद करो ये भी बाबा नहीं कहते हैं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, देह के सब बंधन छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप समझाते हैं कि प्रीत रखनी है तो एक से रखो, तब बेड़ा पार होगा। बाप के डायरेक्शन पर चलो, मोहजीत राजा की कथा भी है ना, ये वास्तव में अभी के लिए सत्यु के लिए नहीं है कि यहाँ बच्चा मर गया तो माँ बाप से परीक्षा लेगा, नहीं ये तो अभी के लिए, वहां तो कोई बच्चा मरेगा भी नहीं बाप के पहले। तो मोहजीत राजा की कथा भी है ना, पहले नंबर में है बच्चे, बच्चा तो मिल्कियत का मालिक बनेगा, स्त्री तो हाफ पार्टनर है, बच्चा तो फुल मालिक बन जाता है। तो बुद्धि उस तरफ जाती है, बाबा को फुल मालिक बनाएंगे तो ये सब कुछ तुमको दे देंगे। लेन देन की बात ही नहीं कि हम बाबा को देंगे पहले तब हमको बाबा देगा, परंतु हाँ ये कहेंगे बाबा को इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि बाबा से लेना वो नहीं, पर सरेंडर बुद्धि है तो बाबा सब कुछ देता है। तो बाबा कहते हैं लेन देन की बात ही नहीं है, ये तो समझ की बात है, भले तुम सुनते हो फिर दूसरे दिन सब भूल जाता है ना, ये तो नहीं भूलेंगे जो आज बाबा बता रहे हैं, पर बच्चे भूल जाते हैं, सुनते हैं फिर भूल जाते हैं। बुद्धि में रहेगा तो दूसरों को भी समझा सकेंगे, बाप को याद करने से तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे, ये तो बहुत सहज है, मुख चलाते रहो, एम ऑब्जेक्ट बताते रहो, विशाल बुद्धि तो झट समझेंगे, अंत में ये चित्र आदि ही काम आएंगे, इसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है, चित्र में है ना, वही श्री कृष्ण राधे कृष्ण वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो इनका क्या संबंध है आपस में ये तो कोई नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण तो जरूर पहले प्रिंस होंगे, पहले तो प्रिंस प्रिंसेस होंगे ना, लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेस है, बेगर टू प्रिंस कहते हैं ना, बेगर टू किंग तो नहीं कहते, बेगर उसे राजा तो नहीं, पहले राजकुमार बनेगा, प्रिंस के बाद ही किंग बनते हैं, ये तो बहुत ही सहज है, परंतु माया कोई को पकड़ लेती है, किसकी निंदा करना ग्लानी करना ये तो बहुतों की आदत है, सुना, बहुतों की आदत है निंदा करना ग्लानी करना, और तो कोई काम है ही नहीं, उनको यही काम है, जिनसे मिलना उनको फलाने की ग्लानी फलाने की निंदा यही करना ही काम है। बाप को कभी याद ही नहीं करेंगे, एक दो की ग्लानी का धंधा ही करते हैं, ये है एक दो की ग्लानी का धंधा करना, ये है माया का पाठ, ये माया पाठ पढ़ाती है। बाप का पाठ तो बिल्कुल ही सीधा है, पिछाड़ी में ये सन्यासी आदि भी जागेंगे, कहेंगे कि ज्ञान है तो इन भीकेज में ही है, अभी जाग रहे हैं, कितनी जगह अभी संतों का सम्मेलन हुआ, ओआरसी में हुआ, इतना सफल हुआ जो बात मत पूछो, हर एक ने कितना ब्रह्मा कुमारियों की महिमा गाई। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में ये सन्यासी आदि जागेंगे, कहेंगे कि ज्ञान है तो इन बीकेज में है, कुमार कुमारियां तो पवित्र होते हैं, सब प्रजा पिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, हमारे में कोई खराब ख्यालात भी नहीं आना चाहिए, खराब ख्यालात भी नहीं आना चाहिए, बहुतों को अभी भी खराब ख्यालात आते हैं, फिर इसकी सजा भी बहुत कड़ी है, बाप समझाते तो बहुत है, अगर कुछ चाल तुम्हारी फिर खराब देखी तो यहाँ रह नहीं सकेंगे, चलो थोड़ा बहुत कुछ देखा सावधान हो गए तो फिर भी चलो बच गए, आपको रहने मिलेगा, परंतु फिर और भी चलन बिगड़ती गई तो बाबा कहते यहाँ रह भी नहीं सकेंगे, थोड़ी सजा भी देनी होती है, तुम लायक नहीं हो, बाप को ठगते हो, बाप के पास रहते हो और बाप की श्रीमत पर नहीं चलते तो बाप को ठगते हो, तुम बाप को याद कर नहीं सकेंगे, अवस्था सारी गिर जाती है, अवस्था गिरना ही सजा है। अब ये भी बहुत बड़ी बात, अगर अवस्था गिर गई माना ये भी एक सजा है, अवस्था गिरना ही सजा है, श्री मत पर न चलने से अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं, बाप के डायरेक्शन पर न चलने से और ही भूत की प्रवेशता होती है। बाबा को तो कभी कभी ख्याल आता है, हाँ बच्चों की ऐसी चलन जब देखते हैं श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो बाबा को क्या ख्याल आता है, कहीं बहुत बड़ी कड़ी सजाएं अभी ही शुरू न हो जाए, अभी ही शुरू न हो जाए कड़ी सजाएं। सजाएं भी बहुत गुप्त होती है ना, तो पहले अंदर की अवस्था गिरेगी, फिर धीरे धीरे फिर तन पर भी आएगा असर, वो भी फिर सबके संबंधों पर भी असर आएगा, सब बहुत कुछ होगा। तो बाबा कहते सजाएं भी बहुत गुप्त होती है ना, कहीं कड़ी पीड़ा ना आ जाए। बहुत गिरते हैं, बहुत सजा खाते हैं, बाप तो सब इशारे से समझाते रहते हैं, अपनी तकदीर को लकीर बहुत लगाते हैं, इसलिए बाप खबरदार करते रहते हैं। अभी गफलत करने का समय नहीं है, अपने को सुधारो, अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं है, कभी भी आ जाए। इसलिए सब बाबा ने कह भी दिया अचानक, अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलनी है, स्वयं को स्वयं ही सुधारना है, छीछी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी है। दूसरा, बंधन मुक्त है तो पूरा पूरा बलिहार जाना है, अपना ममत्व निकाल देना है, कभी भी किसी की निंदा व पर चिंतन नहीं करना है, गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना है। वरदान, समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर, समर्थ स्थिति एक स्विच है, हाँ स्विच ऑन कर, व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे समर्थ स्थिति है स्विच, इस स्विच को ऑन करो तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। स्मृति का स्विच ऑन हुआ, एक एक जो व्यर्थ संकल्प आते हैं उसको एक एक हटाने का जो मेहनत है उसे छूट जाएंगे। जब स्थिति समर्थ होगी तो महादानी वरदानी बन जाएंगे, क्योंकि दाता का अर्थ ही है समर्थ, समर्थ ही दे सकता है, और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता है। तो यही अव्यक्त फरिश्तों का श्रेष्ठ कार्य है। स्लोगन, सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। भाग्यवान आत्मा कौन? सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा हैं। आज इशारा, अव्यक्त इशारा नहीं दिया है, अव्यक्त इशारा पता नहीं आया, आज का अव्यक्त इशारा है आज 13 तारीख है, आज का अव्यक्त इशारा, जो संतुष्ट मणियां है वो क्या होगी? जो संतुष्ट मणियां है वो मन से दिल से सर्व से बाप से ड्रामा से सदा संतुष्ट होंगे। संतुष्ट मणि नहीं है तो हाँ सबका दोष ही निकालती रहेगी, तो जो संतुष्ट मणि है वो मन से दिल से सर्व से बाप से ड्रामा से सदा संतुष्ट होंगे, उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देंगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। संतुष्ट मणि की कितनी विशेषता है। चलो ओम शांति। बाबा को याद करेंगे और फिर डबल विदेशी जो आए हैं वो बैठे रहेंगे आज का प्रोग्राम।